तो शबरी, उसका नाम शबरी को पड़ा, शबर जाति की थी वो, शबर कुलोत्पन्ना। शबर मतलब एकदम नीच जाति, एक्चुअली नीच जाति उसको कहते हैं जो जो किसी जानवर को मारकर उसके ऊपर अपना उदर निर्वाह करते हैं। ऐसे अनेक नीच कार्यों में से एक कार्य यह है जो किसी जीवित की हत्या करके उस पर अपना चरितार्थ चलाते हैं, तो वो उसमें से एक जाति शबर है। तो वो उसके घर में बहुत बकरियां रहा करती थी, और वो छोटी सी थी कन्या, और बहुत प्रेम करती थी अपने बकरियों से, बहुत लाड़ प्यार करती थी उनको। लेकिन छोटे ही उम्र में इसको पता चला कि बकरियों की संख्या कम होते जा रही है, भले बकरियां नए बकरियों को जन्म दे रही हैं, पिल्ले भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी संख्या जो ओवरऑल ना वो कम होते जा रही है। उसको प्रश्न पड़ता है ऐसे कैसे हो रहा है, संख्या तो बढ़नी चाहिए ना, ना बच्चे दे रहे तो, फिर भी नंबर कम होते जा रहे हैं। तो एक दिन वो पता करती है बहुत देने के बाद में कि ऐसे क्यों हो रहा है। तब तो उसे पता चलता है कि मेरे पिताजी वो बकरियों को काटने के लिए भेज देते हैं। तो उसको ये जब पता चला ना, तो उसको ये सहन नहीं हुआ, शी कुडंट जस्ट एक्सेप्ट इट। कैसे कैसे हो सकता है कि मेरे पिताजी बकरियों को मार रहे हैं, मतलब मारने के लिए दे रहे हैं, और इसलिए वो कम मर जा रहे हैं। तो उसको लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन दिस प्लेस। तो इतनी छोटी सी 5 साल की शबरी घर छोड़ के भाग जाते हैं। और तो वैसे ही वो शबर जाति की थी, तो पेड़ पे चढ़ना उतरना, पेड़ के फल तोड़ना फिर उतरना, भाग भाग के खेल खेल में चढ़ना फिर उतरना, जंगल में रहना, कंदमूल तोड़ना, नदी में कूदना, तो उसके लिए स्वाभाविक था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था उसके लिए। तो वो डीप जंगल में चली गई भाग के, मतलब उसको ना दूर जाना चाहिए था, इच्छा थी दूर जाए मैं, कि मुझे मिले ही, मैं मिली हूँ नहीं उनको, ढूंढेंगे तो मिलना नहीं चाहिए, इतना दूर जाना था उसको। इसलिए वो भागती रही भागती रही भागती रही भागती रही, आखिर थक गई, रात भी हो गई। तो जंगल में वो उसने अच्छे पेड़ देखे, पेड़ पे चढ़ी, ऊपर जाके सो गई। बहुत देर के बाद उसको जाग आई, जाग आई तो देखे अरे बहुत सारे लोग हैं उधर, रात को तो कोई नहीं थे उधर, बहुत सारे लोग ऐसे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, कोई लकड़ी इकट्ठा कर रहा है, कोई फल इकट्ठा कर रहा है, कोई पत्ते इकट्ठा कर रहा है, कोई अग्निकुंड तैयार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा बहुत जैसे कर मानो कुछ बड़ा कार्य हो रहा है, कुछ तैयारी की जा रही है। सब लोग, कुछ लोग शिष्य टाइप लोग हैं, कुछ लोग बुजुर्ग टाइप लोग हैं, कोई बैठे हुए हैं, शिष्य टाइप लोग जो है वो भाग रहे हैं इधर उधर, ऊपर से पूरा देख रही है वो, पूरा दिन भर ऊपर से देखती है, और उसको अच्छा लगता है बहुत। से तेजस्वी पुरुष सब, हाँ यज्ञ करने वाले भी, यज्ञ को सहायता करने वाले सब लोग तेजस्वी पुरुष, विद्यार्थी, शिक्षक, गुरु। तो फिर वो उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि ना इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनको मुझे भी मदद करना चाहिए। लेकिन डर भी है कि मैं तो ऐसे भिल्ल जाति की हूँ, शबर जाति की हूँ, वो मुझे स्वीकार करेंगे या डांटेंगे, पता नहीं हम क्या करेंगे। लेकिन सेवा करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। तो अगले दिन क्या किया उसने, दो एक तो देखा उनका शेड्यूल क्या है, सब देखा, तो पता चला कि इस समय उठते हैं, इस समय शुरू होता है, इस समय बंद होता है। तो वो फिर तय करके उसके पहले ही उठ जाती है, बहुत पहले। वो पूरा स्टडी करके रखा होता है कि इनको लकड़ी चाहिए, लकड़ी वो वहाँ से लेके आते हैं, इनको फूल चाहिए वो वहाँ से लेके आते हैं, फल चाहिए तो इधर से लेके आते हैं, और यहाँ रखते हैं, यहाँ सजाते हैं, हाँ इस तरह का सब देखा है उसने। तो सब वो तैयारी करने लगती है और सब रखना आरंभ कर देती है, और पूरा ना सब मिलके जो कर रहे हैं वो अकेले सब कुछ करके, उसके पहले ही जो लोग उठने के पहले ही सब कुछ करके वापस पेड़ पर जाके बैठ जाती है। तो यू कैन स्टार्ट। तो वो सब लोग आश्चर्य से हो जाते हैं कि किसने किया है सब कुछ ये, तो उन्हें तुमने किया होगा, उन्होंने किया होगा, तो सब लोग बोलते मैंने कुछ नहीं किया, हम तो अभी अभी आए हैं। तो वो बहुत मतलब उनको आश्चर्य होता है, लेकिन तैयारी तो तैयारी को यज्ञ कर लेते हैं पूरा रोज का, जो हवन पूजा है, और उनको अभी कुतूहल है ना कि किसने किया। तो वो क्या करते हैं ना, वो अपने समय से जल्दी उठ जाते हैं और छुप जाते हैं इधर उधर। तो उतने में ये पेड़ से उतरती है, यहाँ जाके फूल लाती है, इधर रखती है, यहाँ से फल लेके आती है, यहाँ से लकड़ी लेके आती है, सब पूरा एकदम सिस्टमेटिक काम एकदम तेजी से करती है, सब भग भग के इधर से सब एक्चुअली फुल्ली ट्रेन जैसा कर देती है। और सब तैयारी करके अभी ऊपर भागने ही वाली है वो, तो ये लोग आके उसको पकड़ लेते हैं, कौन हो तुम, क्या कर रही हो। तो वो प्रसन्न हो जाते उसके ऊपर कि इतनी छोटी सी कन्या है, इतना सुंदर भाव है उसका, इतनी तत्परता से कार्य कर रही है, इतनी कुशलता से कर रही है, इतना परफेक्ट कर रही है कि जैसे हमको चाहिए वैसे, मानो हमने सिखाया उसको, ऐसे केवल देख के इसने इतना सुंदर तैयारी की है। बड़े प्रसन्न हो जाते, फिर वो ऊपर पेड़ भी भागती नहीं है, फिर वो नीचे ही रहकर उनकी सेवा करती है। बहुत दिनों तक उनका एक अनुष्ठान रहता है, कई दिनों का एक प्रोग्राम रहता है पूरा। तो कई दिनों के बाद में उनकी रोज की सेवा करने के बाद में उनका प्रसाद जूठा जो है वो खाती है, वहीं रहती है, पेड़ पे जाती नहीं है और वहीं पर सेवा करती है, ऑफिशियल सेवा करती है। और एक दिन उनका जो अनुष्ठान है वो पूरा हो जाता है, अभी उनका जो प्रोग्राम है वहाँ का वो समाप्त होता है, और वो समाप्त होकर उनका जाने का समय आता है। तो जाने के समय पर ये ऋषि मुनि जो गुरुजन हैं कितने प्रसन्न हो जाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं आप लोग, और उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी सेवा से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, और इस सेवा के बदले में एक दिन जरूर आपको प्रभु राम के दर्शन होंगे, ऐसे बताते हैं उसको, एक दिन आपको प्रभु राम के दर्शन होंगे। तो शबरी को इतनी खुशी होती है ना, देखो फिर वही बात है। हाँ क्या बात है कि जब आदमी ना दुख से विभोर होता है ना, तो भी सब कुछ भूल जाता है कि जेब में पैसे भी थे मेरे, वो किसी ने मार लिए, वो याद नहीं आता है। जब आदमी बहुत दुखी होता है ना, तो लोग उसका पॉकेट मार लेते हैं, उसका घड़ी छीन लेते हैं, उसको समझता ही नहीं क्योंकि इतना दुखी है आदमी वो। या आपको बहुत सारा मार लग गया तो आपको उस समय कुछ ध्यान नहीं रहता कि मेरी घड़ी टूट के कहीं उड़ गई, चश्मा किधर उड़ गया, मालूम नहीं पड़ता। आप बाद में हॉस्पिटल लगे, अरे घड़ी किधर गई, अरे चश्मा किधर गया, अरे पॉकेट किधर गया, क्योंकि वो इतना ओवरवेलमिंग होता है, जब क्या कहते हैं उसको, भावातिरेक, उस अनुभव में ना कई कॉमन सेंस की चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसे भी जैसे ही वो वरदान मिलता है कि आपको भगवान राम के दर्शन होंगे, तो इतनी उसकी खुशी होती है, इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि वो एकदम आकाश में, मतलब उसे जैसे उड़ने लगती है आनंद से। और फिर वो आनंद में इतनी मशगूल है, उतने में सब लोग पैकिंग करके चले जाते हैं, खुद देखते हुए हाथ दिखाते चले जाते हैं, और ये आनंद में इतना भाव विभोर हो गई है। और क्षितिज को भी उधर भी उनका दर्शन होने नहीं होता है, अभी वो चले गए, मतलब वो लास्ट उनका जो विजन था ना वो भी समाप्त हो गया, उसको वो उसकी नज़र के परे चले गए वो। तब इसको होश आता है, तब उसको याद आता है कि मैंने पूछा ही नहीं कब प्रभु राम के दर्शन हो के, ये सुनकर मुझे जो खुशी हुई, लेकिन मैंने उनको पूछा नहीं कब। अभी अगर उन्होंने कहा है तो उनको पूरी श्रद्धा है। देखो शबरी का विशेषता क्या है, शबरी को पूरी श्रद्धा है कि संतों ने जो कहा है वो होगा। तो संतों ने कहा है तो होगा, और अभी प्रश्न बड़ा यक्ष प्रश्न है कि अभी कब होगा मालूम नहीं, तो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम इट कैन हैपन। तो फिर वो जो वहाँ पर कुटिया में रहते थे उसी कुटिया में रहना आरंभ कर देती है, उधर ही रहती है, और 5 साल की उम्र से लेकर कहते हैं कि पता नहीं 85 साल की उम्र तक वो वहीं रहती है। आज भी सुबह मैंने उसका कथा में वर्णन किया था कुछ कुछ हिस्से का। वो ये है कि शबरी ने ना कभी अपने जीवन में कुछ इंद्रिया का भोग लिया ही नहीं, ना बालिका के रूप में लिया, ना युवा अवस्था में लिया, ना और थोड़ी मध्यम अवस्था में लिया, ना वृद्धावस्था में लिया, ना अति वृद्धावस्था में लिया, ना अति अति वृद्धावस्था में लिया, ना आंखें ओझल हो गई, सुनना कम हो गया। कभी भी उसने ना जंगल में रहकर, ना परिवार था उसका, ना कुछ कनेक्शन था, ना कोई भोग की वस्तु थी, कंदमूल खाकर रहती थी, और उसका एक ही चिंतन था कि कभी भी आ सकते हैं, रोज का एक ही चिंतन था कभी भी आ सकते हैं। तो वो रोज जंगल से फूल बिनती थी, और जिस रास्ते से वो आ सकते हैं वो रास्ते को फूल से सजाती थी, और रोज रोज ऐसे रास्ता है ना, ऐसे पूरा यहाँ वहाँ ऐसे पूरा पूरा ऐसे पूरा रास्ता पूरा फूलों का बना देना, थोड़ा बहुत हो लेकिन पूरा भर देना अपने झोपड़ी तक, और फिर जंगल में जाकर जो फल मिलते हैं वो रोज खा के देखना कौन सा मीठा है, और वो रखना, कभी बेर कभी कुछ भी, रोज का अपना उसका एक काम था। उसमें तो कच्चे फल ही मिलेंगे और क्या, पकवान तो नहीं मिलेगा। तो उसका रोज का चिंतन था, वो दिन रात यही करती थी, रोड सजाना और फल ला के रखना। अभी प्रभु रामचंद्र को मेरे ख्याल से कबंध ने बताया ना, कबंध का जब वध किया प्रभु ने, तो वो जब उसका जैसे वध होता है तो वो बताता है कि मैं राक्षस था, मुझे ऐसा शाप था वगैरह वगैरह, और मुझे उस शाप भी दिया गया था, जब प्रभु रामचंद्र आएंगे और आपका वध करेंगे तो आप उद्धार हो जाएगा आपका, तो फिर आगे आप उनको प्रभु को गाइड करना कि शबरी को जाकर मिलना है आपको, शबरी आपको आगे का गाइड करेगी सीता की खोज में। तो उस समय वाल्मीकि मुनि लिखते हैं रामायण के अंदर, रुक जा ले लो प्रसाद, रामायण के अंदर लिखते हैं कि प्रभु को बता रहे हैं कि श्लोक है बहुत सुंदर, इतना सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं कि श्रमणाम श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। वो वर्णन कर रहे हैं कि आपको लगता होगा वो शबरी है, शबरी शबर कुलोत्पन्ना है, नीच जाति की है, लेकिन अभिगच्छेत का वर्णन आचार्य करते हैं कि अभी खाली ऐसे नहीं कहा है कि गच्छेति राघव मतलब जाओ, वो कहते हैं अभिगच्छेति, यानी अभी का वो शास्त्र आचार्य लोग उसका वर्णन करते हैं कि अभी का मतलब श्रद्धा और नम्रता से सुशोभित होकर जाना, क्योंकि शबरी जैसी परम धर्म परायण कोई नहीं है, शबरी जैसी निवृत्ति धर्मचारिणी कोई नहीं है। निवृत्ति धर्मचारिणी क्यों? क्योंकि उसने प्रवृत्ति का कोई अनुभव नहीं किया है जीवन भर में। दो प्रकार की प्रवृत्ति धारणा होती है, एक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब हम जैसे भोग लेने वाले लोग, और निवृत्ति में सब छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि भगवान के चिंतन में जी रहे हैं। तो कहते हैं वो परम निवृत्ति धर्मचारिणी है, कभी जीवन में उसने प्रवृत्ति का अनुभव ही नहीं किया है, केवल निवृत्ति में पूरा जीवन बिताया है, केवल आपके याद में आपके इंतजार में जीवन बिताया है। तो आप ये मत समझना कि वो शबरी है, नीच जाति की है, उस भावना से मत जाना। वो श्रवणाम पूरा उसने इस जैसे किसी विद्वान को, किसी परम पंडित परम भक्त के हृदय में जो साक्षात्कार ज्ञान होता है, वो ज्ञान पूरा उसको प्राप्त हो गया, केवल साधना से, उससे ये दो साधना करने से उसका पूरा परम वैष्णव बन गई है वो। तो एक और भी जरूर बहुत सारी कहानियां उसकी जो उस दिन बताई गई थी। एनीवे, तो ऐसे शबरी के पास भगवान स्वयं श्रद्धा और नम्रता का अलंकार लेकर गए, आदर के साथ गए, ये समझ के कि मैं भगवान हूं और वो शबरी है, क्या करेगी मेरा पता नहीं। तो वो कैसे ना, वो रोज की, अभी वो ना बहुत बुढ़ी हो चुकी है, अभी उसकी कमर भी झुक गई है, उसके आंखों में भी दृष्टि ओझल हो गई है, उसका सुनना भी ओझल हो गया है, अभी वो पुराने जैसा चल विचलता से काम नहीं कर सकती है, अभी लिमिटेड स्लो एक्टिविटी हो गई। आप ले लो प्रभु जी, ठंडा हो जाएगा, गरम गरम प्रभु जी ले लो। सो वो झुकी हुई है कमर से, और झुककर वो फूल लगा रही है रास्ते पर, और वो जमीन की ओर देख रही है और एक फूल लगा रही है, आप सोच सकते हैं। और उतने में ना चार चरण उसके नजर में आ जाते हैं, टू पेयर्स ऑफ लोटस फीट आ जाते हैं। तो वो ना झट से ऊपर भी उठ सकती नहीं, क्योंकि उसके पीठ में मोड़ आ गया ना, मतलब वो झुक गई है। तो वो उनके चरणों को देखकर ही वो समझ जाती है कि, वो कहती है प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए, अभी उसने चरणों का दर्शन नहीं किया है, क्योंकि उसको इतना जब हमको कैसा ना तुरंत झुकना मुमकिन नहीं होता है, तुरंत झुक के ऊपर उठना मुमकिन नहीं होता है, अभी थोड़ा सा स्लो मोशन में काम करना पड़ता है। तो वैसे तो वो तो बहुत बुढ़िया हो चुकी है, तो वो आकर कहते प्रभु आ गए आप, और उनको ना ऐसी झुकी अवस्था में गाइड करके उन फूलों पर चढ़ते हुए चलते हुए अपने कुटी में ले जाती है, कुटी में उनको डांट के आसन में बिठाती है, और तब उसका दर्शन होता है, क्योंकि जब वो नीचे बैठते हैं तब उसको दर्शन होता है, तभी वो दर्शन करते हैं मुख कमल का, आंखों से आंसू बहाती है, और उसको उसे भाव विवर्तन समझ में आ रही है, क्या करूँ अभी, पहले क्या करूँ, पहले ये करूँ कि वो करूँ। हमारे वो थे ना, आप लोग नहीं तभी थे, हमारे एक भक्त थे यहाँ पर देवकी सुत प्रभु दीपक साहनी, इनको पता है। तो वो महाराज जी हमारे मीरा रोड में एक दिन महाराज ने निर्णय लिया कि मैं मेरावड़ के सबके लोगों के घर पे जाऊंगा और हर मंगलवार को कुछ ना कुछ घर पे जाऊंगा, ऐसे उन्होंने एक निश्चय किया। उसको मन में विचार आया उन्हें, तो उन्होंने सबसे पहले सेक्टर 2 को चुना और सेक्टर 2 में कई सारे भक्त रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया। कहाँ से? बीबी सिंह के घर से, जहाँ पर वैष्णो सेवा प्रभु का घर है ना, उसके वो साइड पे और एक दिवोडी का घर था उस समय, अभी भी वहाँ पर उनकी बेटी रहती है, तो उस समय वो रहते थे। तो हमने मैंने पूरा प्लानिंग किया था कि किसके बाद में किसके घर पे, किसके बाद में किसके घर पे, पूरा सेटिंग मैंने प्लानिंग करके क्या करना है सबको ओरिएंट करके रखा था मैंने। और वो सारा चीज़ है ना, उसके बाद में लास्ट जो घर था ना वासुकी में, मेरे अगले वाले बिल्डिंग में, वो देवकी सुत प्रभु के घर पे उनका आगमन था। तो सारा कुछ ठीक हुआ, धीरे धीरे हमने बराबर टाइम को निकाल कर महाराज को उनके घर पर ले गए। अभी वो मेरे काउंसिल ही थे, उनका बेचारे का देहांत हो गया 16 साल पहले, तो वो उसका बताया था उनको मैंने कि आपको आएंगे ना तो पहले माला पहनानी है, फिर उसके बाद में आपको फूल देना है, फिर उसके बाद में आपको अंदर ले जाना है, फिर उनको वो डीटीज का इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद में महाराज बैठ जाएंगे, फिर मृदंग और करताल निकालना है, फिर कीर्तन करना है, ऐसा मैंने बताया था उनको बड़े अच्छी तरह, सबको सेटिंग करके दिया था। लेकिन ये ना, जैसे महाराज को देखा ना तो भाव विभोर हो गए पूरे, और भाव विभोर हो गए ना पूरा भूल गए क्या करना है, मतलब अभी फूल 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 की तरह, फूल कहाँ है मेरे, फूल कहाँ है, माला माला की तरह, माला की तरह, मृदंग कहाँ है, अरे मतलब अपने घर पे ऐसा पूरा कंफ्यूज तरीके से। और मैं उनको बोल रहा अरे फूल लाओ, अरे मृदंग लाओ, करताल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो वो तो पूरा उसको ना पता ही नहीं कुछ चीज़ का, मानो उसको पता ही नहीं, सब व्यवस्था करके रखा है उसने, लेकिन उसको बिल्कुल भाव विभोर था कि अंदर कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मेरे घर में मैंने क्या रखा है किधर। और महाराज वैसे घर पे अंदर भी चले आए, तभी तक उसको कुछ माला नहीं पहनाया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बाद में मैंने ही महाराज को ऐसे अपनी तरफ से बिठाया वगैरह, फिर पूछा करताल किधर है, तो वो नहीं मिल रहा है, मृदंग वो नहीं मिल रहा है, माला किधर है वो नहीं मिल रही है, और महाराज देख रहे हैं कि मैं उसको पूछ रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, और मैं उसको मतलब ऑलमोस्ट एंग्री था, मतलब अभी क्या तुम यार, इतना अभी बताया तुम समझ, तो इतना बताने के बाद तुम इतना पागल क्यों हो रहे हो? तो महाराज ने क्या बोला, ही इज इन एक्सटेसी। महाराज समझ गए कि वो एक्सटेसी में थे, एक्सटेसी का अनुभव कर रहे थे, वो गुरु जी के आने का आनंद जो है ना उसका वो भाव विभोर बना दिया उसने। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, और महाराज ने उसको कमेंट भी किया है कि दिस इज एक्सटेसी। तो ऐसी शबरी एक्सटेसी में गई, उसको पता नहीं चला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो चलो उसको याद आ रही है वो फल खिलानी चाहिए, तो फिर वो फल लेकर आई, वो सब उस पर आधे आधे कटे हुए थे, सब बेर काटे हुए थे, तो बैठी सामने भाभी, समझो भाई मैं बैठ गया आपके सामने, आपको निकाल के डाल रहा हूँ मुँह में, इसके मुँह में डाल रहा हूँ, इसके प्लेट का आपके मुँह में डाल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे ना क्या हो गया प्रभु जी को, अभी वो खाने भी दे नहीं, इसका जूठा खिला रहे हैं, उसका जूठा खिला रहे हैं, क्या चल रहा है? तो वैसे वो बैठ गए सामने और सीधा ऐसा हाथ में दे रही है निकाल के, ऐसा प्लेट में वगैरह कुछ नहीं, सीधा हाथ में निकाल के दे रही है, और वो ऐसा दिख रहा है उसको कि झूठा खाना खाना खाया हुआ आधा खाया हुआ है, और लक्ष्मण जी बाजू में बैठे हुए हैं, और भगवान भी ऐसे प्रेम से ले रहे हैं और खा रहे हैं इसको, दूसरा निकाल के ये अब इससे ज़्यादा मीठा है, अभी मैंने खा के देखा है, लोग खा रहे हैं इसको, और बड़े प्रेम का आनंद चल रहा है, इनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है कि इतनी नीच जाति की औरत, हाँ गाँव में जंगल में रहने वाले, कुछ शिष्टाचार नहीं, कुछ संस्कार नहीं, कुछ नहीं जानते हैं, कौन है ये रघुकुल नंदन प्रभु रामचंद्र है ये, वो उसको खिलाए दे जा रही है झूठा आपका, कुछ में कुछ तरीका नहीं, कुछ संस्कार नहीं, कुछ नहीं, तो अपने बॉडी लैंग्वेज से बता नहीं सकते वो, तो भगवान कहते चुप रहो अभी कुछ बोलने का काम नहीं, चलने दो, सगाई हो रही है चलने दो। सारा बेड़ खा लेते भगवान उसका, और फिर भगवान के आंखों के सामने शबरी भगवत धाम चले जाती, उसी समय उसका उद्धार हो जाता है। तो इसके आगे भी पंपा, ये सब कथा जो है ना पंपा सरोवर की कथा है, पंपा सरोवर जो है ना वो साउथ इंडिया में उधर की कथा है। तो एक कथा उसकी ऐसी भी आती है शबरी की, कि जंगल में बहुत सारे लोग रहा करते थे, तो ये तो सबसे ज़्यादा भिल्ल वाली औरत, तो उसका कोई सम्मान नहीं था उसके अंदर। तो एक दिन ऐसे कहा गया कि पंपा सरोवर ना दूषित हो गया है लोगों के पापों से, और ऐसे कहा गया है कि जो कोई संत रहेगा व्यक्ति कोई संत आके स्नान करेगा तो पंपा सरोवर स्वच्छ हो जाएगा। तो कई लोग जो अपने आप को संत समझते हैं वो आ जाते हैं, तो मैं संत हूँ तो मैं स्नान करूँगा तो पंपा सरोवर स्वच्छ हो जाएगा। तो एक संत आता है स्नान करता है कुछ नहीं होता है, दूसरा आता है स्नान करता है कुछ नहीं होता है, तीसरा आता है स्नान करता तो और गंदा हो जाता है। इस तरह से जो जो लोग समझते हैं कि अरे ये भी वो कैसा ना, वो द्रौपदी का स्वयं था ना स्वयंवर, तो भी ये गया अरे मैं तो उठा ही लूंगा, तो वो हार गया तो बोला ये तो क्या है मैं उठा लूंगा उसको, ऐसा करके सब हार गए ना। इस तरह सारे संत आए, जिसने जिसने चांस लिया वो सब हार गए। अभी किसी ने कहा अभी एक ही व्यक्ति बची है वो शबरी, सब लोग बोलते अरे हम लोग जैसे ब्राह्मण लोगों ने स्नान किया तो कुछ नहीं शबरी का क्या हो सकता है, तो लोग जिद करते नहीं 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 उसको भी मौका देना चाहिए। तो शबरी स्नान करती है तो पूरा जल स्वच्छ हो जाता है, ऐसा है। तो शबरी की गुफा भी है, वो बहुत सुंदर गुफा है शबरी की गुफा। तो ऐसे शबरी के जीवन में जो पेशेंस जो है ना, उसका अनलिमिटेड पेशेंस था। एक तो आपको पता चलता ना कि भाई 80 साल के बाद में आने वाले हैं, ठीक है कोई बात नहीं आई कैन वेट, पर इसको पता ही नहीं है 8 दिन के बाद आएंगे, 80 दिन के बाद में आएंगे, 8 साल के बाद में आएंगे, 15 साल के बाद में आएंगे, कुछ पता ही नहीं है। और पूरा जीवन निछावर कर दिया उस इंतज़ार में। ऐसा भी नहीं कि मुझे विवाह भी करना है, मेरा भी गृहस्थी होनी चाहिए, मेरा भी बच्चे होने चाहिए, मेरा भी कर्तव्य होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना देर तक करूँगी, इतना दिन तो किया मैंने। एक गुरु गुरु श्रद्धा, मतलब गुरु के वचनों पर श्रद्धा कितनी थी उसकी। चलो मैंने गलती किया, नहीं पूछा नहीं मैंने कि कब आएंगे, वो मौका ही निकल गया मेरे हाथ से। तो इतनी श्रद्धा है कि जो गोपियाँ कैसी थी, 112 साल तक उन्होंने रोज खाना बनाया, रोज डेकोरेशन किया, खुद को सजाया, कुंज सजाया, आज आएंगे कृष्ण, उन्होंने कहा था ना परसों आएंगे, तो आज जरूर आना चाहिए। आज परसों का है, उसके ऊपर 2 दिन हो गए आज, तो आज आएंगे जरूर। ऐसे करके 112 साल तक उसी भाव से उन्होंने कभी छोड़ नहीं दिया उसको कि बहुत हो गया, अभी 1 साल पूरा हो गया, अभी नहीं आएंगे। फिर जो बलराम जाके चले गए, उसके बाद में वादा किया कि आएंगे, वो भी चले गए। उद्धव जी आए, वो भी चले गए, उन्हें कभी छोड़ा नहीं अपना। ये सब बकवास करते जो आते वादा करके चले जाते हैं, लेकिन रोज करते रहे गोपियाँ। शबरी 5 साल की उम्र से फिर युवावस्था में आई, फिर कई साल युवावस्था में बिताए, फिर मध्यम वयीन हो गई, फिर बुढ़ी हो गई, फिर अति बुढ़ी हो गई। इतने साल तक अपना पूरा जीवन एक ही या भावना में जोड़कर उसने पूरे संयम के साथ में इंतज़ार किया। कभी ऐसा नहीं हुआ क्या फ़ायदा है इतना दिन मेहनत किया अभी भी नहीं आते, पता नहीं आने वाले कि नहीं आने वाले, क्या गुरु जी ने कहा था सच कहा था क्या मालूम नहीं, पता नहीं क्या कहा होगा, पता नहीं ये जन्म नहीं अगले जन्म में होगा शायद, मतलब ऐसा कुछ विचार मन में नहीं आया। उसी श्रद्धा के साथ, उसी भावना के साथ, उसी प्रेम के साथ रोज बेर बिनना, रोज फूल बिनना, रोज मार्ग सजाना, रोज इंतजार करना, वो दिन फेल हो जाना, फिर अगले दिन उठ के पूरे नए उत्साह के साथ फिर वही कोशिश करना, कितनी बड़ी तपस्या है। उस उत्साह में कभी कमी नहीं हुई, कभी आलस्य नहीं हुआ, पता नहीं आज आधे ही बेर लेते बैन फिर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे तो भी वेस्ट तो जाना ही है, क्यों ज़्यादा बिल बिनना है, नहीं नहीं आए आएंगे। तो इस तरह से अचानक एक दिन 4 चरण कमल उसके नज़रों में आ गए और दर्शन हुआ उसको। तो उसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं कि वैष्णव जब वैष्णव बनता है ना तो उसके कभी जाति और धर्म और भाषा और रूप कुल कोई कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव जब बनता है वैष्णव तो वो हर जाति वर्ण आश्रम के परे चले जाता है। इसलिए किसी भी वैष्णव की परीक्षा या जांच या जजमेंट जाति धर्म भाषा के ऊपर कभी नहीं करनी चाहिए, और कभी भी जातिवाचक धर्मवाचक भाषावाचक धनवाचक शब्दों से उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों पता है ना, वो मारवाड़ी भक्त वो पता है आपको, वो जो चमार जाति का भक्त जो आता है ना त्रिमूर से आता है, ऐसे कभी बोलना नहीं चाहिए। जो जाति के लिए बोल को मन में रखकर किया हो, या उसके धन को मन में रख के किया हो, या उसकी भाषा को मन में रख के किया हो, या उसका वर्ण के रख मन में रख के किया हो, ऐसे वर्ण जातक भाषावाचक जातिवाचक वर्णसूचक शब्दों से वैष्णव का तिरस्कार करना महाभारत के अनुसार अक्षम्य अपराध है। जाने अनजाने में भी कभी भी भक्त के शरीर का, जाति का, वर्ण का निंदा नहीं करना चाहिए, ऐसे महाभारत में लिखा है। और एक लिखा है कि चांडाल कौन है, नीच कौन है। नीच की व्याख्या संतों ने की है कि जो भगवान का भजन नहीं करता है वही नीच है, सिंपल व्याख्या की गई। भजन न करे वही नीच, जो भजन न करे वही भंगी, ऐसा कबीर दास बोलते हैं, सिंपल व्याख्या किया उन्होंने। कबीर दास जी बहुत बोल्ड थे एकदम, बहुत क्या कहते हैं, कठोर वचन में उन्होंने अपने अभंग लिखे, जो भी कुछ लिखा है दोहा, तो उसमें कहते हैं कबीरा भजन न करे सो भंगी। तो इतना महिमा बताया भक्ति का कि भक्ति करने से चांडाल भी परम वैष्णव बन जाता है, यहाँ तक कि चांडाल कुल उत्पन्न, जो काक भुशुंडी थे ना, कौवा था, कौवा मतलब उसकी योनि इतनी नीच मानी गई है, पक्षियों में सबसे नीच मानी गई है कौवों की योनि, तो वैसे कौवों की योनि में जन्म लिए हुए जो संत थे काक भुशुंडी, उसके चरणों में विष्णु तत्व, जो स्वयं विष्णु तत्व हैं गरुड़ जी महाराज, वो उनके चरणों में बैठ के कथा सुनते हैं और बार बार कथा में बार बार प्रणाम करते हैं उसको। आप कहते हैं वाह क्या बात हुई, एक प्रणाम कर लिया और एक कुछ बात की और एक प्रणाम कर लिया, ऐसे अनंत बार 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 पुनि पुनि उस काग को, उस काकभुशुंडी को गरुड़ जी महाराज दंडवत करते हैं। तो ये भक्त की महिमा में वर्णन आता है उसका, कि ऐसे भक्त होते भगवान के, तो किसी भी जन्म में किसी भी योनि में रहेंगे उनकी महिमा कम नहीं होती। अब जानते हैं काकभुशुंडी के बारे में, जो अष्ट जीव है ना, जो चिरंजीव, चिरंजीव जितने जीव है ना उसमें से एक काकभुशुंडी है, एक अश्वत्थामा है, एक हनुमान जी है, परशुराम जी है, और कौन है, काकभुशुंडी है, विभीषण है, और ऐसे 8 लोग हैं उसमें से एक काकभुशुंडी है। अभी गरुड़ जी के बाद निकले तो बता देता हूँ आपको, गरुड़ जी है ना वो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, विष्णु तत्व है स्वयं का। कारण क्या बताया गया है कि विष्णु को अगर किसी को उठाना है, धारण करना है वाहन के रूप में, तो दुनिया में किसी जीव की ताकत नहीं है विष्णु को धारण करने के सिवाय विष्णु के, इसलिए विष्णु ने ही गरुड़ के रूप में जन्म लिया। क्योंकि जब विष्णु के ऊपर इंद्र ने आक्रमण किया, अपना वज्र फेंका, तो इंद्र ने कहा कि तुम्हारा वज्र मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र फेंका उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा ब्रह्मास्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ब्रह्मा जी ने भेजा है ना वो, इसलिए उनका आदर करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मेरी एक एक पंख जो है ना वो मैं जलाने के लिए अलाउ कर देता हूँ, तो एक पंख ब्रह्मास्त्र से जल गया उसका, ऐसे गरुड़ जी थे। बहुत बड़ा महात्म्य है गरुड़ जी का, बहुत बड़ा चरित्र है, महाभारत में उसका वर्णन आता है, बहुत सुंदर चरित्र, बहुत ही रोचक प्रेरणादायक चरित्र है गरुड़ जी का, गरुड़ जी के महान गुणों का चरित्र का वर्णन किया गया उसमें। जय जय श्री राधे श्याम।